This is the Epilogue Audio Experience.
Nine XM Song Secret.
Words यानी कि शब्द life में ना बड़े important होते हैं, क्योंकि कई बार words गलत हो जाते हैं तो band बच जाता है, और जब आप गलत बात भी सही शब्दों में कहते हैं तो उसका impact ना बहुत हाई हो जाता है। और जब बात वर्ड्स की आती है तो वर्ड्स के जादूगर कहे जाते हैं लिरिसिस्ट, यानी कि सॉन्ग राइटर्स। हाई, माय नेम इज शिफाली और आप सुन रहे हैं 9XM सॉन्ग सीक्रेट ऑन ईपीलॉग मीडिया, एंड यू कैन लिसन ऑन ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट और ऑन योर फेवरेट पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग एप्स। अब जैसा आपको पता चल ही गया होगा कि आज सॉन्ग सीक्रेट में हमारे साथ एक लिरिसिस्ट आने वाले हैं। आज के लिरिसिस्ट हमारे बड़े ही स्पेशल हैं, क्योंकि जब इनके गाने आप सुनते हो ना तो धुन और सिंगर्स का ख्याल बाद में आता है, सबसे पहले ख्याल आता है कि वाह क्या लिखा है, मतलब अंदर तक फील होता है। इनका एक गाना रिसेंटली जो ना जाने कितने लोगों ने स्ट्रीम किया होगा, वो एक ऐसा गाना है जिसके बारे में वो खुद कहते हैं कि जब मैंने इस गाने को लिख दिया तो मुझे लगा कि मतलब अब मुझे अपनी कलम तोड़ देनी चाहिए। ये उनके खुद के शब्द हैं। ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ उस गाने की जिसने सबके दिलों को छुआ, जिसको सुनने के बाद सबकी आंखें नम हुई होंगी, केसरी मूवी का तेरी मिट्टी। और उनको लिखने वाले मिस्टर मनोज मुंतशिर आज हमारे साथ हैं। एंड मनोज मुंतशिर का ना सिर्फ ये गाना बल्कि ना जाने कितने और गाने बड़े पॉपुलर हुए, और चूंकि ये शब्दों के जादूगर हैं तो कुछ शायरी भी करते हैं। सो आई एम सो श्योर कि आज का जो ये पॉडकास्ट है ना, बड़ा ही शायराना होने वाला है, और बहुत सारे कमाल के गानों के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानियां हमें सुनने को मिलने वाली हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड, होप आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। सो प्लीज़ अपने सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक जॉय भरी राइड देने वाली हूँ। इनके शब्दों में आप खो जाएंगे, इस बात की मेरे पॉडकास्ट की गारंटी है। सो वेलकम टू माई शो जिसका नाम है 9XM सॉन्ग सीक्रेट, एंड वी आर रेडी टू लिसन टू द स्टोरी बिहाइंड तेरी मिट्टी।
तेरी मिट्टी की सबसे खास बात यह है कि वो सभी लोग जो इस गाने में इन्वॉल्व रहे हैं
जी,
वो चाहे मैं हूँ जिसने ये गाना लिखा है, या और कौन हो जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है
जी,
बी प्राग हो जिन्होंने ये गाना गाया है, अजीम दयानी इस पूरे एल्बम के सुपरवाइजर, म्यूजिक सुपरवाइजर, या अनुराग सिंह जो फिल्म के डायरेक्टर हैं जिनकी ब्रीफ पे ये गाना बना है।
ओके,
हम सब एक बात मानते हैं कि तेरी मिट्टी इज बियॉन्ड अस, ये हमारे टैलेंट से कहीं आगे की चीज है
जी।
शायद हम सब मिलके भी दोबारा तेरी मिट्टी ना बना पाए। मेरे लिए तेरी मिट्टी की कहानी शुरू होती है जब मुझे अजीम का फोन आता है धर्मा से कि एक सिचुएशन है केसरी में जो हम चाहते हैं कि आप देख लें एक बार।
ओके,
मैं धर्मा जाता हूँ और मुझे वो लास्ट का सीक्वेंस जो है जो आप सबने फिल्म में देखा है
जी जी,
सिर्फ एक मिनट का, आपने तो बहुत लंबा सीक्वेंस देखा है, मुझे सिर्फ एक मिनट का एक सीक्वेंस दिखाया गया जहां हमारे जो 21 ब्रेव हार्ट्स थे ये सब के सब शहीद हो चुके हैं और इनके जो शव हैं वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं और वहां बैकग्राउंड के लिए एक गाना चाहिए था।
ओके,
हाँ, मुझे जो रेफरेंस दिया था हमारे डायरेक्टर अनुराग सिंह ने
जी,
उस रेफरेंस के आते ही मैं एक बात समझ गया कि अब यहाँ कोई खराब गाना नहीं लिखा जा सकता क्योंकि अनुराग का टेस्ट बहुत हाई है। अनुराग ने बहुत अच्छी पोइट्री सुन रखी है और उनको समझ बहुत अच्छी है। तो वो रेफरेंस क्या था मैं बताता हूँ आपको, बहुत कम लोगों को पता है कि तेरी मिट्टी का जो रेफरेंस सॉन्ग था जिसको सुना के मुझे इंस्पायर किया गया वो था कैफी आजमी का लिखा हुआ फिल्म हकीकत का गाना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
ओके,
ये गाना मुझे भी बड़ा पसंद है, मैं बचपन से इनफैक्ट स्कूल्स में परफॉर्म करता रहा हूं
जी।
तो बस इतनी सी ब्रीफ लेके मैं वापस आ गया और मैंने जो लाइनें भेजी अनुराग को वो सिर्फ एक मिनट के ड्यूरेशन की थी, क्योंकि जो सीक्वेंस मैंने देखा था वो तकरीबन एक डेढ़ मिनट से ज्यादा का था नहीं।
ओके,
तो मैंने इतना ही भेजा कि ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे।
वाह क्या बात है।
ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे।
क्या बात है।
ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।
क्या बात है,
तेरी
क्या
मिट्टी
बात है।
में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
वाह,
ये भेजा, और ये भेजने के बाद जो हुआ वो था कमाल। सबका ऐसा रिएक्शन आया कि ये तो कुछ एक अजब सी चीज बन रही है
जी,
और सबकी आंखें नम हो गई इतना ही सुनने के बाद जब ये औरकों ने खुद गा के सुनाया। और फिर ये फैसला लिया गया कुछ दिनों बाद ये लाइनें भेजने के बाद कि इस गाने को थोड़ा सा लंबा करते हैं, थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत होल्ड कर रहा है, इसमें जो इमोशनल चार्ज है वो बहुत ज्यादा है।
जी जी,
मुझे फिर फोन आया कि इसका एक अंतरा आप और लिखें, एक स्टंजा और लिखें, और इस बार मैं कहां था, लंदन में।
अच्छा,
मेरी बुक पब्लिश हुई थी, मेरी फितरत है मस्ताना,
जी, जी।
और उसके बुक टूर पे मैं लंदन गया था।
ओके।
मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे तो सीक्वेंस एक मिनट का दिखाया गया था, तो ये बाकी के लिए हम विजुअल्स कहां से लाएंगे
जी।
तो अनुराग ने मुझे बोला इसकी फिक्र ना करें आप, हमारे लिए गाना बहुत वर्क कर रहा है और गाना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है हम सबके लिए, तो हम वो विजुअल्स कहीं ना कहीं से हम ढूंढ लेंगे, हम निकाल लेंगे, आप चिंता मत करो, आप गाना लिखो।
ओके।
और आप देखें कि जो माहौल था उस वक्त, मैं बड़ा होमसिक फील कर रहा था, मुझे लंदन गए हुए 3-4 दिन हो चुके थे, और 3-4 दिनों में ही फरवरी का महीना, लंदन की ठंड, मैं पागल हो रहा था, मुझे अपना मुंबई याद आ रहा था, मुझे अपना हिंदुस्तान याद आ रहा था, मुझे वो धूल धक्कड़ धुआं, जो भी चीजें मुंबई की शिकायत भरी हुआ करती थी मेरे लिए पहले, वही सब चीजें मुझे याद आ रही थी, वही सब चीजें मैं मिस कर रहा था, और मुझे अपना शहर भी याद आ रहा था, गौरीगंज अमेठी। तो ओवरऑल हिंदुस्तान मुझे अपनी ओर खींच रहा था। एक सुबह तकरीबन 4 बजे अचानक मैं नींद से उठा, और मेरे दिमाग में औरको की ये धुन चल रही थी, और मैंने एक स्टंजा और लिखा, और वो स्टंजा क्या था कि सरसों से भरे खलिहान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, सरसों से भरे खलिहान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका, ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
वाव,
ये मैंने भेज दिया और मैं अपना टूर खत्म करके वापस आ गया। जैसे ही वापस आया मुझे फिर से धर्मा से फोन आया और मुझे कहा गया कि एक अंतरा और लिख दीजिए।
अच्छा।
और अब मैं पागल हो चुका था, मैंने कहा एक बात बताएं, गाना 2-2.5 मिनट के ऊपर का होता नहीं है, हमने ऑलरेडी जो लिख दिया है ये 4-4.5 मिनट के ऊपर जा चुका है, और कितना लंबा हम गाना करेंगे। लेकिन वही कि हर कोई इस गाने में इमोशनली इन्वॉल्व हो चुका था, राइट, फ्रॉम करण जौहर टू अक्षय सर। अक्षय सर तो मतलब उनका जो रिस्पॉन्स था, अक्षय कुमार की बात कर रहा हूँ मैं, वो पागल हो चुके थे, और ये गाना उनको खुद इतना पसंद था कि उन्होंने कुछ दिनों बाद एक शो में प्रॉपरली कहा भी कि तकरीबन 750 गाने उन पे पिक्चराइज हो चुके हैं, और उनकी जिंदगी का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा और सबसे टच करने वाला गाना ये है, उनका फेवरेट ये गाना है, तेरी मिट्टी। तो जाहिर सी बात है कि वो भी चाहते थे कि गाना और लंबा किया जाए। खैर, मेरे दिमाग में वो धुन वैसे ही घूम रही थी और कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी इसमें। और अब तीसरा अंतरा लिखने की बारी आई, थर्ड स्टैंजा, और ये थर्ड स्टैंजा सबसे मैजिकल था। कि शायद अनुराग भी समझते थे कि जितना पुश करेंगे मुझे, जितना दूर तक ले जाएंगे, उतनी गहरी बातें निकलेंगी। तो ये तीसरा स्टैंजा वही था जिसकी आखिरी लाइन सबसे मशहूर, सबसे पॉपुलर लाइन बनी इस गाने की। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो।
वाओ।
ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो।
क्या बात है।
ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। जिनको फिल्मी गानों के बारे में पता है वो एक बात जानते हैं कि हमेशा फिल्मों में मुखड़े हिट होते हैं या कोई हुक लाइन हिट होती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि मुखड़े से ज्यादा वेट अंतरे को मिल जाए या अंतरे की कोई लाइन, स्टंजा की कोई लाइन किसी को याद रह जाए। ये अपने आप में अजूबा है, अनोखी बात है, ये अपने आप में एक मिसाल होगी कि तेरी मिट्टी की जो सबसे पॉपुलर सबसे मशहूर लाइन है वो इसकी आखिरी लाइन है, थर्ड स्टैंजा की लास्ट लाइन, जहां तक आमतौर पे कभी कोई पहुंचता भी नहीं, कोई सुनता भी नहीं गाना उतना देर तक, ना रेडियो प्ले करते हैं, लेकिन आखिरी लाइन, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है, ये सबसे पॉपुलर लाइन हुई इस गाने की। खैर ये गाना रिलीज हुआ, रिलीज होने के तकरीबन 3 दिन बाद एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो मुझे एक फोन आया मेरे ऑफिस के नंबर पे, ऑफिस ने मुझे मेरे कैबिन में ट्रांसफर किया, मैंने फोन लिया तो पुंछ सेक्टर से, जम्मू कश्मीर में पुंछ से एक सोल्जर का फोन था,
क्या बात है,
और उन्होंने ये गाना सुना था, सिर्फ 3 दिन हुए थे गाने को रिलीज हुए और ये गाना धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा था, अपना रंग दिखाने लगा था। वो बड़े भरे हुए गले से मुझे कह रहे थे कि मैं जमींदार हूँ मनोज भाई, यूपी में मेरी बहुत जमीनें हैं, लेकिन जब मैंने फौज में भर्ती होने की बात सोची, अपने घर वालों को गांव वालों को बताई तो सब मुझ पे हंसे, बोले 25,000 की नौकरी के लिए तुम फौज में जा रहे हो, यहाँ तुम्हारी इतनी जमीनें हैं, इतना तुम्हारा कारोबार है।
जी।
मैं कभी जवाब नहीं दे पाया मनोज भाई उनको, आई डोंट हैव अ वे विद वर्ड्स, तो मैं बता नहीं पाया कि मैं 25,000 के लिए नहीं, किस चीज के लिए जा रहा हूँ, मैं पेचेक के लिए नहीं जा रहा, मैं एक आरजू के लिए जा रहा हूँ, और वो आरजू आपने लिख दी कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तो मैं अपने दिल की यही आरजू पूरी करने के लिए फौज में आया था कि मुझे इस देश की मिट्टी में मिल जाना है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा इनाम मेरे लिए दूसरा कुछ हो नहीं सकता। वो दिन और आज का दिन, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं ने इसे अपना एंथम बना लिया है, हमारे फौजी आज जब घर से निकलते हैं तो उनके दिल में वतन की मोहब्बत होती है और होंठों पे तेरी मिट्टी, जनगण मन के बाद सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गाना है इस वक्त देश का।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो आई जस्ट फील हम्बल्ड और मैं दुआ करता हूँ कि हमारा वतन सलामत रहे, हमारे फौजी जो हमारी हिफाजत करते हैं वो सलामत रहें, और दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई में हमें कभी हार का सामना न करना पड़े।
बिल्कुल।
जय हिंद।
वाओ क्या बात है सर, सर आई लिटरली गॉट गूज बम्स। सर आपकी राइटिंग के ना बहुत सारे शेड्स हैं, उसमें से एक गाने के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। वो इतना रोमांटिक सॉन्ग है जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अगर आप प्यार करते हो उसके आगे ना सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। दिस सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट इज मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, जिसे गाया है अरिजीत सिंह एंड साशा तिरुपति ने और कंपोज किया है मिथुन दा ने, और इसी के साथ साथ आपके शब्दों ने ना उस गाने में 4 चांद लगा दिए। क्या है इसके पीछे की कहानी?
ये जो गाना है मैं फिर भी तुमको चाहूँगा,
जी
ये 2017 में रिलीज हुआ था
जी,
हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म के लिए।
करेक्ट।
लेकिन सच ये है जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये गाना एक्चुअली 2001 में लिखा गया था, रिलीज के 16 साल पहले।
अच्छा।
और ये वो पीरियड था जब मैं फिल्मों के लिए गाने लिखता ही नहीं था।
ओके।
मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं कश्मीर गया था।
ओके।
कश्मीर में अकेला गया था किसी काम से।
ओके।
और जाहिर सी बात है कि मैं अपनी बीवी को मिस कर रहा था। और एक शाम डल झील के किनारे मेरे हाथ में कहवा और धुंध का माहौल था, शिकारे चल रहे थे लेक में और हल्की हल्की बर्फबारी हुई थी, तो जो आपको देवदार के और चीड़ के पेड़ दिखते हैं डल झील के बैकड्रॉप में, वो सफेद सफेद दिख रहे थे। और अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आना शुरू हुआ वहीं कि ये हरे दरख्तों के पत्ते जब शाखों से गिर जाएंगे, जब झील का पानी सूखेगा और सारे कमल कुमलाएंगे, ये वादियां जब सो जाएंगी और आवाजें खो जाएंगी, मेरी जान मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तो उस वक्त तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, एक छोटी सी डायरी थी, मैंने उस डायरी में लिख के कहीं जेब में रख लिया।
क्या बात।
उन दिनों में टेलीविजन के लिए बहुत कुछ लिखता था, तो कई बार ऐसा हुआ कि टेलीविजन पे जब सिचुएशन ऐसी कभी आई तो मैंने लोगों को ये लाइनें सुनाने की कोशिश की कि देखिए ये लाइनें हैं अगर कोई गाना बन पाए तो, लेकिन कभी किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
ओके।
और बहुत सारा वक्त गुजर गया। मुझे याद है मैंने एक विलेन का वो गाना लिखा था गलियां, और उसके बाद मोहित सूरी ने सुना ये जो नज्म है ये सुनी और मोहित के दिल पे लग गई।
अच्छा
और मोहित ने मुझे बोला कि ये मैं अपनी फिल्म में यूज़ करूँगा कभी। खैर बहुत सारा वक्त गुजर गया, मोहित ने विलेन के बाद एक और फिल्म बनाई हमारी अधूरी कहानी और यूज़ नहीं किया, तो मैं भी ये मान के बैठ गया कि शायद मोहित भूल गए होंगे।
अच्छा
लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक मोहित का फ़ोन आता है जब हाफ गर्लफ्रेंड बना रहे होते हैं कि मुझे वो नज़्म चाहिए आपकी। अब मैंने मोहित को समझाने की कोशिश की और मोहित का म्यूजिकल सेंस मतलब इतना अच्छा है कि उनका निकनेम म्यूजिक सूरी है, तो मोहित
अच्छा
सूरी तो एक नाम है पर
है।
हम इंडस्ट्री में जो सारे यार दोस्त हैं उनको म्यूजिक सूरी के नाम से बुलाते हैं बिकॉज़ ही कैन नेवर गो रॉन्ग विद हिज म्यूजिक। तो मैंने मोहित से कहा, मैंने कहा मोहित ये एक प्रॉब्लम है कि ये एक्चुअली नज्म है, ये गाना नहीं है, और नज्म को जब भी हम गाने में बदलने जाते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो जो आखिरी नज्म जो पॉपुलर हुई थी गाने में ढल के भी, वो थी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
अच्छा।
वो भी काफी बदल दी गई थी, जो ओरिजिनल नज्म थी साहिर की लिखी हुई वो काफी बदल के गाने में आई थी। मैंने कहा और समहाउ मैं चाहता हूँ कि इस नज्म को बदला ना जाए, ये जैसी है वैसी की वैसी अगर काम आ सके तो। तो मोहित ने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है आप चिंता मत करो, एक बार ये नज्म मिथुन को भेज दो। मिथुन मेरे दोस्त कमाल के कंपोजर, मतलब क्या तारीफ की जाए उनकी, और देखो क्या बनाते हैं। मैंने मिथुन को भेज दिया। मिथुन काफ़ी टाइम लेते हैं गाने बनाने में, ये भी इंडस्ट्री में मशहूर है, लेकिन जो टाइम लेने के बाद सुनाते हैं ना वो आपके ऊपर जादू सा असर करता है।
करेक्ट करेक्ट।
तो एक दिन मिथुन का फ़ोन आया कि आइए कुछ सुनाता हूँ आपको। मैं मिथुन के स्टूडियो गया और मिथुन ने ये फिर भी तुमको चाहूँगा प्ले किया। मुझे आज भी याद है इनिशियल जो चंक था, तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया।
क्या बात है।
और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है, हम सब जानते हैं कि उसमें अरिजीत सिंह का जो मैजिक आया वो कैसे आया और वो गाना वन ऑफ द बिगेस्ट रोमांटिक हिट्स में शामिल है। लेकिन कमाल की बात यही है कि हर गाने का अपना मुकद्दर होता है, उसकी एक तारीख होती है। 2001 में लिखा हुआ गाना 2017 तक अपनी पारी का इंतजार करता रहा, लेकिन जब उसको शॉट्स खेलने को मिले, जब उसकी इनिंग आई, तो उसने वाकई सीधे बॉल बाउंड्री के बाहर भेज दी।
बिल्कुल।
तो शेफाली ये है कहानी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा कि
जी।
और इस गाने की जो, हालांकि पूरा गाना ही ऑफकोर्स मुझे पसंद है तभी मैंने लिखा, लेकिन दो लाइनें हैं और एक अंतरा है पूरा जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके पॉडकास्ट में मैं वो भी शेयर कर दूँ कि ऐसे जरूरी हो तुम मुझको जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे जरूरी हो तुम मुझको जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे पैर जमीनों को, हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुझे, कल मुझसे मोहब्बत होना हो, कल मुझको इजाजत होना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा।
हाय सर, क्या कमाल का लिखा है आपने। सर देखा जाए जितने भी टूटे हुए दिल है ना, इस गाने से अपने आप को बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करते होंगे। और आपको पता है जब मैंने आपका ये वाला गाना पहली बार सुना था, उसको सुनने के बाद मेरी आंखें नम सी हो गई थी। और सर प्यार भी ना एक ऐसा ही लड्डू है जो खाए तो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। उसी के साथ साथ आपके एक और रोमांटिक गाने की तरफ चलते हैं जिसे गाया है पलक मुच्छाल ने और म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने। एंड दैट सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट इज कौन तुझे। देखा जाए इस गाने की एक ही लाइन में बहुत सारे इमोशंस दिखा दिए आपने कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। इसके पीछे का क्या सीक्रेट है
शेफाली? ये जो गाना है
जी,
कौन तुझे यूं प्यार करेगा, ये गाना मैंने किसी एक्टर एक्ट्रेस फिल्म सिचुएशन हीरो हीरोइन कैरेक्टर किसी के लिए नहीं लिखा था। ये गाना या फिर आप ये कहने की ये जो एक लाइन है कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, ये लाइन मैंने अपने बेटे के लिए कही थी आरू।
अच्छा,
तो हुआ यूं कि एक दिन आरू और मैं खेल रहे थे जैसा कि हर इंडियन हाउसहोल्ड में होता है।
जी।
अक्सर ये पूछा जाता है बच्चे से कि तुम्हें ज्यादा प्यार कौन करता है, हु लव्स यू मोर, मामा और पापा। तो मैंने आरू से पूछा, आरू हु लव्स यू मोर। मेरा वो दिन खराब था। आरू ने बोला मामा।
ओके
मामा, अच्छा कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ।
क्या बात है।
ये लाइन मैंने एकदम रैंडमली आरू को बोली और बोलते ही मुझे लगा कि ये कुछ बड़ी बात हो गई है।
बिल्कुल बिल्कुल।
फोन में लिख के लाइन रख ली। फिर तकरीबन एक साल गुजर गया और एक साल गुजरने के बाद जब ये सिचुएशन आई हमारे सामने
जी,
तो भूषण कुमार जी, मैं, अमाल और नीरज पांडे जी जो फिल्म के डायरेक्टर थे, हम सब बैठे हुए थे टी सीरीज में, और ये जैसे ही सिचुएशन आई मेरे दिमाग में ये लाइन कौन थी और मैंने ये लाइन शेयर की सबसे, और ये लाइन सुनते ही हर किसी को लगा कि वाह ये तो कमाल हो गया, बहुत अच्छी लाइन,
क्या बात है।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो ओरिजिनली मेल था थॉट कि कौन तुझे क्यों प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। तो हमने ये लिखा और गाना ऐसे ही बनाया, पहले मेल सॉन्ग बनाया, लेकिन नीरज जी ने जब सुना तो उनको लगा कि धोनी के कैरेक्टर में वो फ्लैम्बॉयंस नहीं है, और ये शायद धोनी को भी लगा कि यार मैं किसी को ऐसा मतलब फ्लैम्बॉयंट होके हीरो की तरह नहीं बोल सकता कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। तो मैं ये गाना नहीं होना चाहिए फिल्म में, वो गाना फिल्म से निकल गया, हम उसकी जगह पे कोई और गाना बनाने लगे। लेकिन सबके दिमाग में वो लाइन अटक गई थी कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। कुछ दिन गुजर गए, हम गाने पे गाना बनाते रहे, मैं और अमाल लगे रहे। एक दिन नीरज जी एक आइडिया लेके आए कि देखो वो लाइन बहुत अच्छी है और वो धुन भी बहुत अच्छी बनाई है अमाल ने, एक काम करते हैं उसको फीमेल कर दो।
अच्छा,
फीमेल? तो उन्होंने बोला कि हाँ धोनी का कैरेक्टर जो है फिल्म में, धोनी नहीं बोल सकते हैं पर लड़की तो बोल सकती है, और
बिल्कुल बिल्कुल
कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।
ओके,
और हमें लगा कि हाँ ये बात तो सही है, और हमने उस गाने को फीमेल कर दिया। उसके बाद जो पलक मुच्छाल ने किया उस गाने में, वो हम सबको पता है, इतनी इनोसेंस के साथ गाया है,
बहुत ज्यादा, बहुत
कर रही है,
बहुत प्यारी आवाज
फ्रॉम द हार्ट। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ पलक, जिस तरह वो गाने को ओन करती हैं। और वो गाना जितना कामयाब हुआ, मैं समझता हूँ कि लड़कियों को अपना लव एंथम अगर कोई मिला है पिछले कई सालों में तो वो यही गाना है। और मैं चाहता हूँ शेफाली कि आप ये गाना सुनाएं हमारे सुनने वालों को।
Thank you so much, Manoj sir. It was such a pleasure having you on my show, 9XM Song Secret. And thank you for sharing such amazing secrets behind your lovely songs. And jate jate, a small request I have for you is if you can give a small message to all the listeners of 9XM, will be really great.
Shefali, maine puri zindagi pyar ke gaane likhe hain. Main pyar mein believe karta hoon, jaise ek bachcha magic mein believe karta hai. तो मेरा जो मैसेज है वो ये है कि लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूँ, अब किसी का हो नहीं सकता।
क्या बात है, क्या बात है।
नई खुशबू तलाशूं मैं कि उसकी खुशबुएं भूलूं, नई खुशबू तलाशूं मैं कि उसकी खुशबुएं भूलूं, किसी का होगा ये मेरा तरीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूँ, अब किसी का हो नहीं सकता।
Thank you for listening. Hope you enjoy this episode of 9XM Song Secret, which is available on Epilogue Media and other leading podcast platforms like Apple Podcast, Spotify, JioSaavn and more. And do subscribe and rate us 5 stars on Apple Podcasts. Nine XM Song Secret.